एफएम 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे में आज मैं हूं नईम अख्तर और साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार नईम। And a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network to our daily news magazine program Aaj Savere. And over the next half an hour, we will bring you the latest national and international news. Also, we'll be providing you metro city updates and we'll be exploring the history of today, that is 28th of December. So let us begin with the headlines first.
Ji. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर निगम बोध घाट तक जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली सुबह 11 बजे से अपने एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी लाइव न्यूज 24/7 चैनलों पर अंतिम संस्कार का प्रसारण करेगा। सभी राजधानी स्टेशन और आकाशवाणी के स्थानीय स्टेशन सहित सभी प्राथमिक चैनल इसे प्रसारित करेंगे। सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस अवधि के दौरान पूरे देश और विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशन और उच्चायोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में आधे दिन का अवकाश रहेगा।
Union Home Ministry has said that the government will allocate space for the memorial of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. The ministry said in a statement that the government received a request from the Congress President Mallikarjun Kharge in this regard yesterday. The ministry said immediately after the Union Cabinet meeting, Home Minister Amit Shah communicated to Mr. Kharge and the family of Dr. Manmohan Singh that the government will allocate space for the memorial.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। एक वीडियो संदेश में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी मधुर यादों का स्मरण किया। पड़ोसी देशों सहित विश्व के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुशल और दूरदर्शी राजनेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आर्थिक प्रगति और कूटनीति में उनके असाधारण योगदान को याद किया।
The change of guard ceremony at Rashtrapati Bhavan will not take place today due to national mourning. The President's Secretariat informed this in a statement yesterday. The change of guard ceremony is a time-honored military tradition with roots in military antiquity involving the periodic replacement of guards and sentries at palaces, forts and defense establishments. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory in view of the state funeral schedule of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh in New Delhi today. It said traffic movements will be diverted on Rajaram Kohli Marg, Rajghat Red Light, Signature Bridge and Yudhishthir. Traffic movement will also be restricted on Ring Road, Nishad Raj Road, Boulevard Road, Shama Prasad Mukherjee Marg, Lothian Road and Netaji Subhash Marg from 7 AM to 3 PM. Delhi Police advised people to avoid restricted roads and use public transport. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh's last rites will be performed at Nigam Bodh Ghat in New Delhi. The dignitaries of many of foreign countries and other VIPs, VVIPs and general public will visit Nigam Bodh Ghat to pay tributes to the former Prime Minister.
बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने कहा है कि 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 निरस्त नहीं की जाएगी। BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं लेकिन आयोग को परीक्षा रद्द न करने को लेकर भी अभ्यर्थियों से कई ईमेल मिले हैं। इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि पुनर्परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के दावों के बारे में परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि इन लोगों ने अपने आरोपों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। श्री राजेश सिंह ने कहा कि परीक्षा निर्धारित समय पर होगी और अभ्यर्थी 2 जनवरी 2025 से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. It will be the 117th episode of the monthly radio program. It will be broadcast on the entire network of Akashwani and Doordarshan, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on YouTube channels of AIR News, DD News, PMO and INB Ministry. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कल से लगातार हो रही बारिश से वायु गुणवत्ता में सुधार आया है. इसे देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप 3 के अंतर्गत लगे प्रतिबंध हटा लिए गए थे. ग्रेप 3 के अंतर्गत बीएस 3 के पेट्रोल और बीएस 5 के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन निर्माण और ढहाने जैसी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी.
On to sports news now. In cricket, India were 244/7 at lunch against Australia on the third day of the fourth test of the Border Gavaskar Trophy in Melbourne. The visitors resumed their first innings at the overnight score of 164/5 this morning. They are still trailing by 230 runs. Yesterday, Indian innings tumbled after losing 3 wickets in the span of 6 runs after they were well in control at 153/2 in reply to 474 of Australia's first innings score. Earlier, on day 2 yesterday, the hosts were all out for 474 in their first innings. Stephen Smith scored 140 runs for the hosts. For India, Jasprit Bumrah took 4 wickets while Ravindra Jadeja bagged 3. The 5-match series is currently tied at 1-1.
चीन के शेंजेन में भारत के लक्ष्य सेन किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं. कल क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने हांगकांग के चीन के एंगस एनजी का लॉन्ग को हराया. आज सेमीफाइनल में लक्ष्य का मुकाबला चीन के ह्यूज जे एन से होगा. 3 दिन के इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन 8 शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हैं. और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी कुछ खबरें ले लेते हैं
जी.
तो आपके पास चेन्नई से जुड़ी क्या खबरें शकुन?
यस, आई विल बिगिन विद चेन्नई. चेन्नई'स फेमस बुक फेयर कमेंस्ड यस्टरडे विद 900 स्टॉल्स. दिस 48th एडिशन ऑफ बुक फेयर वाज इनॉग्रेटेड बाय तमिलनाडु डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन. द फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया एंड 10% डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड ऑन ऑल बुक्स. The Mela is open for 17 days, that is up to January 12th next year. The stalls were set up by 10 government departments, including Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation. The Hindu Religious and Charitable Endowments Department are participating for the first time, adding a new dimension to the fair's offerings. More from Chennai, Indian Institute of Technology Madras, IIT Madras, is partnering with Renault Nissan Technology and Business Centre India Private Limited, Renault Nissan Technology, for talent development and innovation. This partnership will provide internships and placement opportunities for IIT Madras BS degree students, which is being actively pursued by 35,000 students. It will create a robust framework for fostering talent development and knowledge exchange. The partnership also envisages enriching the academic experience of IIT Madras students through mentorship programs, Viva sessions and leadership talks led by Renault Nissan tech experts. And now Naeem, will you share the updates from Delhi?
जी बिल्कुल, दिल्ली से मेरे पास कई खबरें हैं शगुन
जी.
दिल्ली दक्षिण पश्चिम जिले की एंटी नारकोटिक्स शाखा ने एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी महिला को निर्वासित किया है. पुलिस ने बताया कि महिला का नाम सोनाली शेख है, जो बांग्लादेश के खुर्जा जिले के नारेल उपजिला के सिंगा शोलपुर गांव की निवासी है. पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय ये महिला 6 वर्ष से भारत के विभिन्न शहरों में रह रही थी. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM को राजधानी में लागू करने का आदेश देने के लिए आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि जब राज्य सरकार विफल होती है तो अदालत को जनहित में हस्तक्षेप करना पड़ता है. सुश्री स्वराज ने कहा कि PMABHIM योजना एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के लिए धन भी आवंटित किया गया है. सुश्री स्वराज ने कहा कि द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली सरकार ने ना तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण दिल्ली का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उन्नत नहीं हो सका। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाने वाली PM उदय योजना के एकल विंडो शिविर की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि ये निर्णय इन शिविरों में जनता की भारी भागीदारी के मद्देनजर लिया गया है। कार्यालय ने बताया कि DDA द्वारा 30 नवंबर से 22 दिसंबर तक हर सप्ताहांत अनधिकृत कॉलोनियों में 10 केंद्रों पर ये शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में अब तक 19,313 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,599 नए आवेदन थे। इस अवधि में 1,152 अधिकृत पर्चियां जारी की गई और 283 संपत्ति धारकों को रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक सौंपा गया। कार्यालय ने बताया कि उपराज्यपाल ने शिविरों की वन विंडो प्रणाली का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस पहल में बुराड़ी, राजनगर, मैदानगढ़ी, रोहिणी, मोहन गार्डन, बापरोला, संगम विहार, राजा विहार और आया नगर समेत कई अनाधिकृत कॉलोनियों में शिविर लगाए गए। और एक आखिरी खबर दिल्ली से यह है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अवैध दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने बताया कि पुलिस ने 9,000 कफ सिरप के बोतलें और 1,80,000 नशीली गोलियां जब्त करी हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ कीमत आंकी गई है। श्री भाटिया ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि आरोपियों की खुदरा बिक्री का तरीका क्या था। और अब आपके पास बेंगलुरु से कुछ खबरें हैं शायद।
जी नईम, लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू बेंगलुरु। द बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL विल एक्सटेंड ट्रेन टाइमिंग्स ऑन द पर्पल एंड ग्रीन लाइंस फॉर न्यू ईयर्स ईव। The last trains from all terminal stations, Silk Institute, Madhavar, Challaghatta and Whitefield will depart at 2 a.m. on January 1, 2025, with the final train from Majestic leaving at 2:40 a.m. Trains will run every 10 minutes from 11 p.m. on December 31 until the extended service period. The MG Road station will close at 11 p.m, with trains halting at Trinity and Cubbon Park instead. Passengers travelling from these stations after 11 p.m. can use a 50 rupees return journey paper ticket available in advance from 8 p.m. at all metro stations. Regular QR code tickets and smart cards will also be valid. BMRCL has advised commuters heading to Whitefield and Silk Institute to board at Trinity and those travelling to Challaghatta and Madhavara to use Cubbon Park. Staying with Bengaluru, Karnataka High Court has directed the Registrar of Births and Deaths to issue modified certificates for transgender individuals who have undergone gender reassignment reflecting both their previous and revised names and genders. This directive will remain in force until the Registration of Births and Deaths Act 1969 is amended to permit gender changes on original certificates. The court also urged the Karnataka Law Commission and state government to review the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 and recommend amendments to the 1969 Act and its rules to align with the 2019 Act. And Anaim?
Mumbai.
Okay, the next city is Mumbai.
Ji. बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC ने सख्त नियम और एक व्यापक कार्य योजना लागू करके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। एक अधिकारी के अनुसार प्राथमिक ध्यान निर्माण स्थलों और सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर है, जो प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए अधिकारी ने बताया कि BMC ने औचक निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 28 निर्माण स्थलों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कारण बताओ नोटिस और कार्य निलंबन आदेश शामिल हैं। BMC के वार्ड स्तर के उड़न दस्तों ने, जो अपने प्रोटोकॉल के पालन की निगरानी के लिए स्थापित किए गए हैं, कथित तौर पर अब तक 868 साइटों का निरीक्षण किया है, जिनमें मेट्रो निर्माण क्षेत्र भी शामिल है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA ने जनवरी 2025 से मुंबई को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक फेरी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। हरित सागर या ग्रीन पोर्ट पहल का हिस्सा इस सेवा का उद्देश्य एक पर्यावरण अनुकूल यात्रा प्रदान करना है। इनमें अनुकूल शून्य उत्सर्जन यात्रा विकल्प है, जबकि यात्रा का समय 20 मिनट कम हो जाता है। फाइबर प्रबलित पॉलीमर से बने और 12 से 15 मीटर लंबे ये फेरी वातानुकूलित सीटों के साथ 20 से 24 यात्रियों को समायोजित कर सकते हैं। 12 की गति से परिचालन नॉट्स की गति से चलने वाले इन जहाजों की परिचालन सीमा 3 घंटे है और इन्हें पूरी तरह से रिचार्ज होने में 75 मिनट लगते हैं। JNPA द्वारा प्रबंधित टिकट ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जो सुविधाजनक चेक इन विकल्प प्रदान करते हैं। एक और खबर मुंबई से यह है कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सिडको ने अपनी लोकप्रिय माई प्रेफर्ड सिडको होम हाउसिंग स्कीम के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले ये 26 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब ऑनलाइन पंजीकरण की समय सीमा 10 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि इस विस्तार का उद्देश्य अधिक संभावित घर खरीदारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, EWS और निम्न आय समूहों LIG को इस बहुप्रतीक्षित किफायती आवास योजना में घर सुरक्षित करने का अवसर प्रदान करना है। ये योजना राज्य के विभिन्न नोड्स में 26,000 घरों की पेशकश करती है। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY पहल के तहत पेश किए गए हैं, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना है। और एक आखिरी खबर मुंबई से यह है कि महाराष्ट्र के परिवहन विभाग के निर्देशानुसार मुंबई वालों को 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगवाना अनिवार्य है। वाहन के प्रकार के आधार पर इसकी स्थापना लागत 531 रूपये से 879 रूपये तक होगी। सेवा के लिए भुगतान लिंक बुधवार को सक्रिय किया गया और कीमत में GST, स्नैपलॉक और तीसरा पंजीकरण चिन्ह स्टिकर शामिल है। दोपहिया और ट्रैक्टर के लिए लागत 531 रूपये है, जबकि ऑटो रिक्शा जैसे तिपहिया वाहनों के लिए 590 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। बड़े वाहन कार, बस, ट्रक और ट्रॉलर सहित सभी वाहनों पर 879 रूपये का शुल्क लगेगा। वाहन मालिकों को जुर्माने से बचने के लिए 31 मार्च 2025 की समय सीमा का पालन करना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, वाहन चोरी को रोकना और वाहन सुरक्षा में सुधार करना है। वाहनों को आगे और पीछे HSRP लगाए जाएंगे, साथ ही 4 पहिया वाहनों के विंडशील्ड पर तीसरा पंजीकरण चिन्ह भी लगाया जाएगा।
Yes, Naeem, now let's focus on Hyderabad now. Telangana High Court has extended relief for BRS working president Tarak Ramarao from arrest till Tuesday in connection with alleged irregularities in the Formula E race case. Tarak Ramarao filed a quash petition after Anti-Corruption Bureau, ACB, had filed a case charging him with criminal breach of trust and misappropriation of funds amounting to 55 crore rupees. ACB had filed an FIR accusing Tarak Ramarao of alleged financial irregularities in Formula E racing events. While Tarak Ramarao was named the prime accused, former Municipal Administration and Urban Development Principal Secretary Arvind Kumar was named second accused and former HMDA Chief Engineer BLN Reddy third accused in the case. And now Naeem will share the updates from Kolkata.
जी, मेरे पास एक स्टोरी है कोलकाता से। कोलकाता शहर में कृत्रिम झील रविंद्र सरोवर का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके लिए करीब 4 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण KMDA इस मामले की देखरेख करेगा। फुटपाथ और जल निकासी व्यवस्था का पुनर्विकास किया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये तो सारी खबरें हुई महानगरों से जुड़ी हुई, और अब महानगरों के मौसम की भी बात कर लेते हैं।
डेफिनेटली,
और दिल्ली की बात करें तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देना जरूरी है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Well, Naimi, it's much the same in other metro cities as well. Chennai, Bengaluru and Hyderabad with light rain and mist. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 19 degrees Celsius and maximum will be around 24 degrees. Hyderabad is expected to have mist again. The temperature will hover between the minimum of 19 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
और वक्त है आपके ये बता दिया जाए अपने श्रोताओं को कि आज यानी 28 दिसंबर को पूरी दुनिया में कहां कहां क्या क्या खास घटा, तो यानी आज के दिन के इतिहास का जिक्र कर लेते हैं।
Let's take our listeners way back in time, Naeem. In the year 1065, the original Westminster Abbey located in London was consecrated and opened this day by Edward the Confessor and became the site of coronations and other ceremonies of national significance in England. Now, in the year 1612, Italian astronomer Galileo Galilei observed Neptune for the first time, although he incorrectly labeled it as a fixed star, although it's a planet. In the year 1885 now, the Indian National Congress was founded by Alan Octavian Hume. The party was a nationalist movement that played a key role in India's independence from the British, after which it turned into a political party. And in the year 1895, the world's first commercial movie screening took place at the Grand Café in Paris. The film was made by Louis and Auguste Lumière, two French brothers who developed a camera projector called the cinematograph.
Okay.
Yes. The Lumière brothers unveiled their invention to the public in March 1895.
और उन्हीं को सबसे पहला या ये कह लीजिए कि सिनेमा का जनक उन्हीं को माना जाता है पूरी दुनिया में आज भी.
जी जी. With a brief film and the brief film showing workers leaving the Lumière factory. This Lumière was the first film.
जी.
And the entrepreneurial siblings screened a series of short scenes from everyday French life and charged admission for the first time in the year 1895 only.
जी, 1767 में किंग ताक्सिन थाईलैंड के राजा बने और उन्होंने थोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया। 1926 में इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की। 1928 में कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई।
In the year 1934, the first women's international test cricket match was played by England and Australia.
1942 में रॉबर्ट सुलिवन पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर 100 बार उड़ान भरी।
In the year 1944, Hungary declared war on Germany. The Provisional Government of Hungary officially declared war on Germany, bringing an end to Hungary's cooperation, sometimes free, sometimes corsaired, with the Axis power.
1995 में पोलैंड के अन्वेषक मार्के कार्मिस्की एक ही वर्ष में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने और इसी साल विश्व सिनेमा का दूसरी सदी में प्रवेश हुआ। सन 2000 में भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में ₹3 का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया और सन 2003 में इसराइल ने कजाकिस्तान के बैंकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरा वाणिज्य उपग्रह छोड़ा और इसी साल अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया।
Well, Naeem, again going back, in the year 1973, Endangered Species Act was signed into a law. And in this same year, President Richard Nixon signed the Endangered Species Act into law. The act, which Nixon called for the previous year, is considered one of the most significant and influential environmental laws in American history.
और अब बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट में हैं।
जी,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, जो वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वो स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता है। राजगोपालाचारी जी की बुद्धि, चातुर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अनेक उच्च कोटि के नेता भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वो विद्वान और अद्भुत लेखक प्रतिभा के धनी थे। वो तमिल और अंग्रेजी अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे। उनको अपनी पुस्तक चक्रवर्ती थरोमगम पर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा नशाबंदी और स्वदेशी वस्तुओं, खासकर खादी के प्रचार प्रसार में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
एंड नेम नाउ लेट्स रिमेम्बर सुमित्रा नंदन पंत।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है
जी।
उनकी भी आज पुण्यतिथि ही है।
यस यस
जी।
एंड ही इज वन ऑफ द मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर and he founded the Chhayavad format of Hindi poetry.
Actually.
And listeners, this format of poetry, Chhayavad, it leans towards themes of love and nature in a new form of mysticism expressed through a subject, rather a subjective voice. He had taken to poetry when he was just 7 years old. You know,
actually.
Yes. And was studying in the fourth grade only. Having spent his childhood surrounded by the natural beauty of the mountains and their florid fauna, it was only natural for him to have been inspired by the beauty around him. And his earlier works reflect this.
वो सिर्फ प्रकृति से ही नहीं बल्कि जो महान हस्तियां इस दुनिया में थी उनके सामने की उनसे भी बहुत प्रेरित होते थे, उनसे भी प्रभावित होते थे। उन्होंने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर भी रचनाएं लिखी हैं।
जी।
और एक बड़ी ही अचंभे वाली बात कह लीजिए या एक बड़ी ही अलग सी बात कह लीजिए, हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ इनको कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने, यानी कि हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ ने, हमारे जो आज के महानायक कहलाते हैं फिल्मों के अमिताभ बच्चन, उनको अमिताभ नाम सुमित्रा नंदन पंत ने ही दिया था, क्योंकि उनके माता पिता ने, हरिवंश राय बच्चन ने उनको जो नाम दिया था वो इंकलाब दिया था।
जी।
तो ये एक बहुत
Such
ही अलग
इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू हैव शेयर्ड।
तो ये तो खैर अपनी जगह है ही बात, सुमित्रा उनके बारे में जितनी बातें की जाएंगी थोड़ी होंगी लेकिन बहुत छोटी सी बातें उनके बारे में और हैं।
जी। एंड नईम ही ऑथर्ड 28 पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूडिंग पोएट्री, वर्स प्लेज एंड ऑल्सो एसेज। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ हिज प्रोमिनेंट वर्क्स, दीज आर चिदम्बरा, वीना पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युकंत, कला और बूढ़ा चांद। एंड चिदम्बरा, इफ यू टॉक अबाउट दैट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स and writings, and this is a virtual magnum opus with the imprints of the natural beauty of hills.
जो दो रचनाओं का भी आपने नाम लिया चिदंबरा, तो इसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और जो दूसरी रचना आपने की कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था।
एग्जैक्टली।
उत्तराखंड राज्य के कौसानी में महाकवि पंत की जन्मस्थली को सरकारी तौर पर अधिग्रहित करके उनके नाम पर एक राजकीय संग्रहालय बनाया गया है, और
सुमित्रा नंदन पंत गैलरी।
जी बिल्कुल। और उसके अंदर महाकवि द्वारा उपयोग में लाई गई दैनिक वस्तुएं जैसे उनकी शॉल, दीपक, पुस्तकों की अलमारी और महाकवि को समर्पित कुछ सम्मान पत्र, पुस्तकें और हस्तलिपि सुरक्षित हैं।
ओके, नाउ लेट्स रिमेम्बर रतन टाटा, अ फिलैंथ्रोपिस्ट हू टच्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। टुडे इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी। His philanthropic endeavors transformed millions of lives in India and beyond. His commitment to philanthropy and corporate social responsibility was key to his leadership style. And he was just 24 years old and had recently graduated from Cornell University with a degree in architecture when he joined Tata Grouping in 1961 as a junior management trainee. And one of his early successes came when he was appointed as the director of National Radio and Electronics, a Tata subsidiary, and under his leadership, it experienced a significant turnaround. And when we talk about personalities such as Mr. Ratan Tata, it not only motivates us, but also inspires everyone who reads about them for years to come. Naeem.
जी, एक और महान हस्ती की आज पुण्यतिथि है, सुंदरलाल शर्मा। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और छत्तीसगढ़ राज्य के जन जागरणकर्ता थे। वो एक कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी की उपाधि दी गई है। छत्तीसगढ़ में इनके नाम पर ही पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। सुंदरलाल शर्मा अपनी किशोरावस्था से ही कविता, लेख और नाटक आदि की रचना करने लगे थे। वो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार को जरूरी समझते थे। हिंदी भाषा के साथ
जी
छत्तीसगढ़ी को भी काफी महत्व देते थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लगभग 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ी दान लीला उनकी चर्चित कृति थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से थे। 18 दिसंबर 1940 को इनका देहावसान हुआ। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में साहित्य आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान स्थापित किया है। तो अभी कहने को हमारे पास और भी काफी चीजें हैं, लेकिन वक्त नहीं है।
डेफिनेटली
तो इजाजत लेते हैं अभी अपने श्रोताओं से। मुझे नईम अख्तर और मेरे साथी शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए।
नमस्कार।